أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين، ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات بجي محمد وآل محمد بر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، استجیبو، اجابت کرو، جواب دو، رسپانس کرو. کس بات کا؟ استجیبو للہ، اللہ کا، ولرسول، اور رسول کا. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے. پروردگار، یہ اجابت، یہ جواب دینا جب وہ پکارے کس وجہ سے ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کریں. اب یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حیات کیا ہے؟ پروردگار جن لوگوں سے مخاطب ہے کہ اجابت کرو اللہ کی اور رسول کی، کیا وہ مردہ ہیں؟ کیا وہ مرے ہوئے ہیں؟ کیا وہ سانس نہیں لے رہے؟ کیا ان کے بدن میں حرکت نہیں ہے؟ جو پروردگار متعال ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی اجابت کرو تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں. تو اگر یہ مرے ہوئے ہوتے، یہ مردہ ہوتے، ان کے پاس سانس نہیں آ رہی ہوتی، ان کا دل نہیں دھڑک رہا ہوتا، ان کے بدن میں حرکت نہ ہوتی، تو اجابت کیسے کرتے؟ ان سے تقاضا ایک ایسے کام کا کیا جا رہا ہے جو بظاہر ایک جیتا جاگتا انسان کرتا ہے. اجابت کرو، اجابت کرو یعنی جواب دو، چاہے اپنے قول کے ذریعے سے، چاہے اپنے عمل کے ذریعے سے. جس بھی قسم کا اجابت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان جیتا جاگتا ہو، اس کی سانس بھی آ رہی ہو، اس کا دل بھی دھڑک رہا ہو، اس کے بدن میں حرکت بھی ہو، تبھی یہ اجابت کرے گا. اور پروردگار کہہ رہے لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کرے. بس یہاں پر حیات سے کیا مراد ہے؟ حیات سے کیا مراد ہے؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کریں، تاکہ تمہیں زندہ کریں. پروردگار یہ زندہ ہیں، یہ سانس لے رہے ہیں، ان کا دل حرکت کر رہا ہے، ان کا بدن حرکت کر رہا ہے، یہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، یہ تیرے رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. وہ کون سی حیات ہے کہ جو انہیں اب تک نصیب نہیں ہوئی اور اجابت خدا اور رسول کے نتیجے میں نصیب ہونے والی ہے؟ وہ کون سی حیات ہے؟ اس حیات کے معنی کو تلاش کرنا ہے. آئیے قرآن مجید ہی سے مراجعہ کرتے ہیں، اور مشہور و معروف آیت جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نہ کرو. ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں ہے کہ مت کہو، لیکن سورہ آل عمران میں گمان مت کرو، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. پروردگار یہ کیسا غیر عاقلانہ تقاضا ہے ہم سے کہ انہیں مردہ گمان نہ کرو. میں خود اسے ہسپتال سے لے کر گیا ہوں غسل خانے، वहां पर मैंने खुद इसे ले जाकर गुस्ल दिया है, मैंने खुद इसे कफन पहनाया है, खुद इसे आगे रख कर इसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है, अब खुद इसे ले जा रहा हूं कब्रिस्तान, वहां पर कब्र खोदी जाएगी, तमाम तर मुर्दों के दरमियान इस मुर्दे को दफना दिया जाएगा। लेकिन बाकी सब कि जिनका गुस्ल भी हुआ, जिनका कफन भी हुआ, जिनकी नमाज भी पढ़ी गई, जिन्हें दफन भी किया गया, उनसे मुतालिक तेरा तकाजा यह नहीं है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि तू खुद कुरान मजीद में जा बजा उन्हें मुर्दा कह रहा है। लेकिन इससे मुतालिक तेरा तकाजा तब्दील हो गया कि इन्हें मुर्दा ना कहो। जाहिरी तौर पर सूरत हाल एक जैसी है, वो भी मर गया, उसकी भी सांस रुक गई, उसके भी बदन की हरकत खत्म हो गई, उसके भी कल्ब ने धड़कना बंद कर दिया। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, इसे भी मरने के बाद डॉक्टर ने कहा फौरी तौर पर दफन करने के लिए ले जाइए, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट बना, इसका भी डेथ सर्टिफिकेट बना, उसे भी ले जाया गया मुर्दा खाने, इसे भी ले जाया गया मुर्दा खाने, उसे भी गुस्ल देने के लिए गुस्साल बुलवाया गया, इसे भी गुस्ल देने के लिए गुस्साल बुलवाया गया, उसे भी कफन दिया गया, इसे भी कफन दिया गया, उसे भी ले जाकर कब्र में दफन किया गया, इसे भी ले जाकर कब्र में दफन किया गया। लेकिन बाकी सबसे मुतालिक परवरदिगार का तकाजा यह नहीं है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, लेकिन इससे मुतालिक परवरदिगार कह रहा है देखो कहने की बात तो कुजा, गुमान भी ना करो। वला तहसबन्नल लजीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवात, परवरदिगार फिर क्या कहें जब इन्हें मुर्दा ना कहें तो क्या कहें, का बल अहयाउन, ये जिंदा हैं, ये तो जिंदा हैं। सूरह बकरा की आयत में है कि तुम शऊर नहीं रखते, और यहां पर है कि इंद रब्बिहिम युरज़कून, अपने रब के यहां पर रिस्क पा रहे हैं। अब हयात का माना क्या है, परवरदिगार मर गया, इसका डेथ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, मैं खुद इसे दफना करा रहा हूं, उसकी कब्र पर मट्टी डालकर आ रहा हूं, तू कह रहा है इसे मुर्दा ना कहो, मुर्दा गुमान ना करो। यह हयात क्या है, यह कौन सी हयात है? इसी आयत में इसका जवाब पोशीदा है। आइए इस आयत के आखिरी टुकड़े की तरफ, इंद रब्बिहिम युरज़कून, यानी अपने परवरदिगार के यहां पर रिज्क पा रहे हैं, यह इनके हयात पर दलील है। परवरदिगार इसे बतौर दलील पेश कर रहा है इनकी हयात के लिए, कि इनकी हयात पर दलील क्या है, इंद रब्बिहिम युरज़कून, कौन किस किस्म का रिस्क है, क्या वहां पर इनके लिए बिरयानी तैयार की गई है, क्या वहां पर इनके लिए खाने तैयार किए गए हैं, क्या वहां पर इनके लिए मुख्तलिफ अनवाउ अकसाम की गजाएं दुरुस्त की गई हैं। इंद रब्बिहिम युरज़कून का मतलब क्या है भाई, ये रिस्क पा रहे हैं अपने परवरदिगार के यहां, ये बात हमें समझ में आ गई, और इसे परवरदिगार ने दलील बनाया इनकी हयात के लिए। अब हयात को समझने के लिए इंद रब्बिहिम युरज़कून को समझना पड़ेगा। इंद रब्बिहिम युरज़कून समझ में आ जाएगा तो हयात पर दलील समझ में आ जाएगी, और हयात समझ में आ जाएगी कि किस किस्म की हयात है। का देखो इस दुनिया का और उस दुनिया में एक राबता है, इस दुनिया का उस दुनिया से क्या है, एक राबता है। किस किस्म का राबता है, का यह दुनिया आखिरत के लिए खेती है, जो यहां पर बोगे उसे वहां पर काटोगे, यानी वहां पर जो तुम्हें रिज्क मिल रहा होगा वो इस मुकाम से मिल रहा होगा, जो यहां पर बोगे उसे वहां पर काटोगे। फमन यअमल मिथकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर एक जर्रे बराबर भी तुमने कोई खैर किया होगा उसे वहां पर अपने सामने मुजस्सम देखोगे। दिक्कत से तर्जुमा करने वालों ने इसका तर्जुमा किया है कि यरा का मतलब है किसी चीज को मुजस्सम देखना, उसको वहां पर मुजस्सम देखोगे अपने सामने। फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर जर्रा बराबर भी शर किया होगा तो उसे भी वहां पर अपने सामने मुजस्सम देखोगे। बस इस दुनिया से इंसान, मैं और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, इस दुनिया से मुस्तकिल अपने लिए रिज्क ऊपर भेज रहे हैं जिसे वहां पर जाकर हमारी खिदमत में पेश किया जाएगा। ये लीजिए आपकी नमाजें, ये लीजिए आपके रोजे, ये लीजिए आपका खुम्स, ये लीजिए आपका जिहाद, ये लीजिए आपका झूठ, ये लीजिए आपकी गीबत, ये लीजिए आपने जो कत्ल किया, सारे गुनाह भी वहां पर रिस्क के तौर पर जमा किए जा रहे हैं, और सारे सवाब के काम भी वहां पर रिस्क के तौर पर जमा किए जा रहे हैं। इंद रब्बिहिम युरज़कून, इंद रब्बिहिम युरज़कून का क्या मतलब है, परवरदिगार ये कहना चाह रहा है देखो जाहिरी तौर पर ये इस दुनिया से चला गया, जाहिरी तौर पर उसके साथ इसके साथ भी तुमने वही कुछ किया जो दूसरे मुर्दों के साथ करते हो, जाहिरी तौर पर इसे भी तुमने गुस्ल दिया, कफन दिया, दफनाया, उसे भी गुस्ल दिया, कफन दिया, दफनाया, लेकिन फर्क यहां पर है कि जैसे ही इसकी सांस रुकी जैसे ही इसकी सांस रुकी, इस दुनिया से उस दुनिया का इसका ताल्लुक और राबता मुनकता हो गया। अब ये यहां पर ना कोई सवाब कर सकता है, ना कोई गुनाह कर सकता है, ना यहां से अपने लिए कोई रिस्क ऊपर भिजवा सकता है। लेकिन जिस शहीद की मैं बात कर रहा हूं, वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि उसकी सांस तो रुक गई, दिल धड़कना तो बंद हो गया, बदन की हरकत तो खत्म हो गई, लेकिन इसका इस दुनिया से उस दुनिया का राबता मुनकता नहीं हुआ। जाते जाते परवरदिगार की राह में खून देकर इसने वो परवरदिगार मुताल की बारगाह में वो नेकी का काम किया है कि जिसके जरिए से हमेशा इस दुनिया से उस दुनिया में रिज्क पहुंचता रहेगा। दीन की हिफाजत का वो काम इसने इस दुनिया में किया है कि अब हम इस दुनिया से उस दुनिया का जो रिज्क जाने का जो राबता है उसे मुनकता नहीं कर रहे, बल्कि इसने यहां पर दीन की हिफाजत का ऐसा काम किया है कि अब इसके खून की तासीर की वजह से जो जो दीन पर अमल करता रहेगा, यहां से उसका रिज्क वहां उसके लिए पहुंचता रहेगा। इंदर रब्बिहिम युरज़कून, अपने रब के यहां पर रिस्क पा रहे। बस यहां से समझ में आता है कि हयात का मतलब यह नहीं है कि इंसान की सांस चल रही हो, हयात का मतलब यह नहीं है कि इंसान का दिल धड़क रहा हो, हयात का मतलब यह नहीं है कि इंसान का बदन हरकत कर रहा हो, हयात का मतलब यह नहीं है कि जिसको गुसलाया ना जाए, जिसे कफनाया ना जाए, जिसे दफन ना किया जाए, बल्कि हयात का मतलब यह है कि वो शख्स जिंदा है कि जिसका इस दुनिया से उस दुनिया का राबता कायम है, जिसका इस दुनिया से उस दुनिया का राबता कायम है, वो जिंदा है, वो हई है, वो जिंदा है, वो हई है, जिसका इस दुनिया से उस दुनिया का राबता कायम है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे जिंदा ऐसे हैं जो चलती फिरती मैयतें हैं, सांस ले रहे हैं, बदन में हरकत है, दिल धड़क रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, बीवी बच्चे भी हैं, अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार भी रहे हैं, लेकिन चूंकि इस दुनिया से अपनी उस दुनिया के लिए कुछ भेज नहीं रहे, इसलिए मुर्दा हैं। क्योंकि यह हयात अता ही इसलिए की गई है, इस हयात को हयात कहा ही इसलिए गया है कि तुम इस दुनिया से रिस्क जमा करके अपने उस दुनिया के लिए भेजो, वहां पर तैयारी करो, ताकि जब वहां जाओ तो तुम्हारे सामने तुम्हारा रिस्क पेश किया जाए। अब यहां से हयात का माना समझ में आ गया कि हयात क्या है, इस दुनिया से उस दुनिया के राबते को बरकरार रखना। कुरान मजीद की एक और आयत, कुरान मजीद इरशाद फरमाता है वलकुम फिल किसास हयातुन, तुम्हारे लिए किसास में हयात रखी है परवरदिगार मुताल। यह भी अजीब आयत है, क्या हुक्म दे रहा है परवरदिगार, किस चीज में हयात है? किसास में हयात है। किसास में क्या होता है? किसी शख्स को कत्ल किया जाता है, परवरदिगार कह रहा है यहां पर इसकी सांस को रोको, हयात है, यहां पर इसके दिल को धड़कने से रोको, हयात है, यहां पर इसके बदन को हरकत करने से रोको, इसमें हयात है। परवरदिगार तू मुझे हुक्म दे रहा है कि मैं आगे बढ़कर इसको मारूं, और फिर कह रहा है इसमें हयात है, ये कौन सी हयात है? का इसलिए हयात है क्योंकि इसको मारने के जरिए से माशरे का राबता उस दुनिया से राबता मुंसलिक हो जाएगा। पूरा माशरा जब इस कसास को देखेगा तो पूरा माशरा जिंदा हो जाएगा, और इस पूरे माशरे का जो राबता है वो उस दुनिया से कायम हो जाएगा। इसलिए कहा इसमें भी हयात है। पर जब एक शख्स का राबता इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ कायम हो तो वो शख्स जिंदा है, जब एक माशरे का ताल्लुक इस दुनिया से उस दुनिया में कायम हो तो वो शख्स, वो माशरा जिंदा है। अब आइए उसी सरनामा कलाम की आयत की तरफ, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ऐ वो लोग के जो ईमान लेकर आए हो, इस्तजीबू, जवाब दो, इजाबत करो, रिस्पॉन्स करो, लिल्लाहे अल्लाह का, वल रसूल और रसूल का, इजा दाअकुम जब वो तुम्हें पुकारे, लिमा युहयीकुम ताकि वो तुम्हें हयात अता करें। यानी क्या? यानी जो तुम्हारा राबता उस आलम से कमजोर पड़ रहा है, इस उस आलम के तुम्हारे राबते को मजबूत करने के लिए जरूरी क्या है कि तुम खुदा की इजाबत करो और तुम रसूल की इजाबत करो, ताकि जो तुम्हारा राबता उस दुनिया से कमजोर पड़ रहा है ना, वो राबता दोबारा मुस्तहकम हो जाए, दोबारा कायम हो जाए और तुम दोबारा उस दुनिया से जुड़ जाओ। इसलिए इजाबत करो अल्लाह की और रसूल की, इस्तजीबू, इजाबत करो, लिल्लाहे वले रसूल, अल्लाह की भी इजाबत करो, अल्लाह के हुक्म को भी मानो और रसूल के हुक्म को भी मानो, इजा दाअकुम जब वो तुम्हें पुकारे। और यह खुद एक बहस है कि दावत इलाही और दावत रसूल खुदा किस तरह से है। क्या दावत इलाही और दावत रसूल इलाही उस दावत की तरह से है जो मैं और आप एक दूसरे को देते हैं, पुकारने के जरिए से देते हैं, बुलाने के जरिए से देते हैं या नहीं, बल्कि दावत रसूल और दावत खुदा किसी और माना में है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन यहां पर जिस मुकाम तक आपको पहुंचाना मकसूद है कि हयात क्या है, जब मुआशरा मुर्दा हो रहा हो, यानी क्या, यानी मुआशरे का उस दुनिया से राबता मुनकता हो रहा हो, ऐसे में इजाबत करो अल्लाह की और रसूल की ताकि वो तुम्हारे माशरे को जिंदा कर दें, ताकि वो तुम्हें जिंदा कर दें। जो तुम्हारा राबता उस दुनिया से कमजोर पड़ गया है ना, वो दोबारा से राबता मुस्तहकम हो जाए, कायम हो जाए। अब समझ में आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला के मैदान में हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद कर रहे हैं, वहां पर आवानो अंसार बुला रहे हैं, आवानो अंसार की जरूरत अपने आप को बचाने के लिए नहीं बुला रहे, एक ऐसे वक्त पर हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद कर रहे हैं जब खुद इमाम का तो सब कुछ लुट चुका है, जिसके बच्चे कत्ल हो जाएं, जिसके बेटे मार दिए जाएं, जिसके भांजे भतीजे कत्ल कर दिए जाएं, वो क्या किसी को अपनी मदद के लिए पुकारेगा? उसके लिए जिंदा रह के इस दुनिया में बाकी रह ही क्या जाता है जो वो किसी को अपनी मदद के लिए पुकारे। लेकिन हल में नासिरिन यंसुरना हुसैन अपनी मदद के लिए नहीं पुकार रहे बल्कि तुम्हें जिंदा करने के लिए पुकार रहे हैं। हल में नासिरिन यंसुरना यानी ये दावत खुदा और दावत रसूल है जो हुसैन की जबानी तुम तक पहुंच रही है। अगर इस दावत पर इजाबत करोगे तो परवरदिगार तुम्हें हयात अता करेगा। और जिस जिसने इस दावत हुसैन इब्ने अली पर लब्बैक कहा, इस दुनिया से जाने के बावजूद भी परवरदिगार मुताल ने उन्हें जिंदा कर दिया। और आज तक यही है, जो भी हुसैन के नाम पर इस दुनिया से जा रहा है हमेशा के लिए जिंदा होकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हल मिन नासिरिन यंसुरना की जो सदा हुसैन बुलंद कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को, पूरे आलम को, पूरे कायनात को हयात देने के लिए, हयात बख्शने के लिए है। ये सदा उस वक्त हुसैन इब्ने अली की करबला में रुक नहीं गई, बल्कि जब जब जहां जहां कयामत तक इंसानियत को हयात की जरूरत पड़ती रहेगी, वहां वहां हल मिन नासिरिन यंसुरना की ये सदा जाती रहेगी। और कयामत तक जो जो हुसैन की इस हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा पर लब्बैक कहता रहेगा, वो हुसैन के जरिए से हयात पाता रहेगा, वो हुसैन के जरिए से हयात पाता रहेगा। इस्तजीबु लिल्लाह व लिरसूल इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें पुकारें, लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हारे माशरे को जिंदा कर दें। और अब इस निगाह से अगर इंसान इमाम हुसैन के इस करबला के मारके पर और इस तहरीक पर निगाह करे तो समझ में आता है कि इस करबला की तहरीक का मकसद माशरे को हयात देना था। क्या तुम नहीं देखते, सुन्नतें इस माशरे से मिटाई जा चुकी हैं, बिदअतें राइज की जा चुकी हैं। ये क्या है? ये दावत हुसैन है हयात के लिए, ये दावत हुसैन है हयात के लिए। एक एक लम्हे इमाम अलैहिस्सलाम जो पैगाम दे रहे हैं वो हयात का पैगाम है। आ जाओ उस हयात अबदी की तरफ कि जिसके बाद मौत मुमकिन नहीं है। आ जाओ उस हयात अबदी की तरफ। अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हर मरहला ब मरहला लोगों को बुला रहे हैं, इसीलिए बुला रहे हैं कि तुम्हारा मुआशरा बज़ाहिर जिंदा है लेकिन मर चुका है। तुम्हारा मुआशरा बज़ाहिर अपने तमाम तर कामों को अंजाम दे रहा है, बाजार उसी तरह से फ़ाल हैं जिस तरह से पहले थे, दुकानें उसी तरह से खुली हुई हैं, मस्जिदें उसी तरह से आबाद हैं, लेकिन तुम मुर्दा हो चुके हो। लेकिन तुम्हारे इस मुआशरे में और तुम्हारे बदन में जान बाकी नहीं रही, तुम्हारा मुआशरा मुर्दा हो चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दावत इलाही और दावत रसूल इलाही का मिसदाक बनकर बुला रहे हैं, आ जाओ, अब भी मौका है, आ जाओ और आकर खुद भी हयात पा जाओ और मुआशरे को भी हयात बख्शो। और मुआशरे को कैसी हयात बख्शी हुसैन इब्ने अली ने, कयाम कयामत जब भी किसी को दुनिया में जिंदगी की ख्वाहिश हुई, उसने हुसैन इब्ने अली के दरवाजे को आकर सलाम किया, उसने हुसैन इब्ने अली के दामन को थामा। वो हयात का पैगाम हुसैन इब्ने अली दे रहे हैं, इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें हयात अता करें। آؤ زہیر میں تمہیں حیات عطا کروں، آؤ حر میں تمہیں زندہ کروں، آؤ حبیب میں تمہیں زندہ کروں۔ ایک ایک کو حسین جمع کر رہے ہیں تاکہ انہیں بھی زندگی دیں اور ان کے ذریعے سے معاشرے کو بھی زندگی دیں۔ اور جو جو کربلا میں معاشرے کو زندگی دینے کے لیے ضروری تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو اس گلدستہ کربلا میں جمع کر لیا۔ ایک ایسے نفوس پاکیزہ وہاں پر جمع کیے کہ ان کے جب انہیں حیات دی جائے گی اور یہ کربلا اور حسین سے حیات پائیں گے تو یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ جن کے ذریعے سے معاشرہ حیات پا جائے گا۔ اور پھر اس معاشرے نے حیات پائی، اور اس حیات کے سلسلے کو حسین کے بعد زینب نے کنٹینیو کیا اور اپنے خطبات کے ذریعے سے حیات بانٹی۔ حل من ناصر ینصرنا، جہاں اللہ اور رسول کی دعوت کا مصداق حسین بن رہے تھے، کوفہ اور شام میں استجیبوا للہ ولرسول کا مصداق زینب کبریٰ بن رہی ہیں، وہاں پر اللہ کا پیغام لے کر جا رہی ہے، وہاں پر پہنچ کے اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ آخر وقت تک ہدایت کی خواہش، آخر وقت تک حیات کی خواہش۔ بار بار امام لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، آخر وقت تک اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ حیات پا جائیں، زندہ ہو جائیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کی طرف آ کر مر جائیں گے، لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں، یہاں پر جو موت ہے وہ تو سب کو آنی ہے، لیکن تم جس موت میں پڑے ہوئے ہو کبھی زندہ نہیں ہو پاؤ گے اگر آج حسین کے کاروان میں شامل نہ ہو۔ وہاں جو یہاں موت ہے وہ تو وہاں بھی آنی ہے، آج نہیں آنی تو کل آنی ہے۔ یہاں قتل نہیں کیے جاؤ گے، کل بیماری سے مر جاؤ گے، کل کسی حادثے میں گزر جاؤ گے، کچھ نہیں ہوا تو بوڑھے ہو کر گزر جاؤ گے، لیکن وہ موت تو سب کے لیے مساوی ہے۔ لیکن اس موت میں جس میں تم ابھی پڑے ہوئے ہو، اس موت سے حیات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اجابت کرو اللہ اور رسول کی صدا پر، اور اب خود فیصلہ کرو کہ اللہ اور رسول کی صدا حسین کی طرف سے آ رہی ہے یا یزید کی طرف سے آ رہی ہے، خود فیصلہ کرو۔ اگر اللہ اور رسول کی دعوت حسین ابن علی کی طرف سے آ رہی ہے تو آؤ لبیک کہو اس صدائے حسین ابن علی پر، خود بھی زندہ ہو جاؤ اور اپنے معاشرے کو بھی زندہ کر لو آخری وقت تک۔ اگر حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے کوئی آوان و انصار چاہیے، اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں حسین، اپنا علی اصغر قربان کر چکے ہیں حسین، اپنے اکبر کو رن میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ چکے ہیں حسین، اپنے عباس کے بازو اٹھا چکے ہیں حسین۔ حتیٰ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا اس وقت علی اصغر کی بھی قربانی دے چکے ہیں حسین، ہر ایک کی قربانی دے چکے ہیں حسین۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، اب یہاں پر حسین اپنی مدد کے لیے نہیں پکار رہے، دین خدا کی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ میں جو آواز دے رہا ہوں یہ میری آواز نہیں ہے، یہ خدا کی آواز ہے، یہ رسول خدا کی آواز ہے، اگر اس پر اجابت کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، ورنہ حسین کے لیے تو موت، جس کے قاسم کے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہو، اس کے لیے موت کی کیا حیثیت ہے؟ کے لیے موت کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن یہ صدا کس لیے ہے؟ تاکہ تم حیات پا جاؤ، اور نہ صرف تم حیات پا جاؤ بلکہ کربلا کے اس بند سے عصر عاشور حسین یہ صدا دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو حیات دینا چاہتے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ اور ایسا ہی ہے، آپ دیکھتے ہیں آج دنیا میں جہاں پر کوئی آزاد شخص ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور عزیزوں، آزاداری بھی اسی صدائے حل من ناصر ینصرنا کا نام ہے۔ آزاداری یعنی اسی صدائے حسین کے سفیر ماتمی بن کر اس صدا کو لوگوں تک پہنچائیں۔ صدائے حل من ناصر، آزاداری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسی صدائے حل من ناصر کے سفیر بن کر نوحہ خاں اس صدا کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ نوحہ خاں، یہ ماتمی، یہ ذاکر، یہ خطبہ، یہ سفیر ہیں حسین ابن علی کی صدا کو پہنچانے کے لیے۔ کیا خوب شعر شاعر نے کہا کہ یہ ماتم ہے حلمن کی صدا، یہ ماتم در حقیقت صدائے حلمن ناصرن ینصرنا ہے، اور ہر عشق ہے جذبہ نصرت کا۔ ماتم حلمن ناصرن ینصرنا کی صدا ہے، اور اگر عشق آنکھوں سے بہ گیا یعنی مولا یا لیتنا کننا معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا، میں بھی اپنا سب کچھ لٹا دیتا مولا تاکہ آپ کے ساتھ مل کر معاشرے کو زندہ کر سکوں۔ یا لیتنا کننا معکم۔ عزیزوں، تاریخ نقل کرتی ہے اس بات کو کہ جب حسین کا کربلا کے میدان میں کوئی نہ بچا تو آئے دروازہ خیمہ پر اور کہنے لگے، یا زینب یا ام کلثوم، یا سکینۃ یا رقیہ، علیکن منی السلام۔ اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رقیہ، میرا آخری سلام۔ تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ گویا اس امام کے اس انداز سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید وداع آخر کے لیے خیموں میں جانا نہیں چاہتے، شاید باہر ہی سے وداع کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایک دفعہ یہ صدا بلند کی، علیکن منی السلام، خیموں سے وہ شور اٹھا، وا محمدہ، وا علیہ، وا حسینہ، کہ ایک دفعہ میرے مولا کو خیموں میں داخل ہونا پڑا۔ اب جو خیمے میں آئے، بی بیوں نے حسین کو گھیر لیا، چاروں طرف سے بی بیوں نے حسین کو گھیر لیا، اور ہر ایک بی بی حسین سے لپٹ لپٹ کر یہ کہتی ہے، والی کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ حسین کسی کو دلاسہ دیتے ہیں، کسی کے بازو چومتے ہیں، کسی کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کسی چھوٹے بچے کو پیار کرتے ہیں۔ ایک ایک حسین الگ الگ انداز سے صبر کی نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں۔ تین وداع تاریخ نے نقل کیے ہیں، تین وداع آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام۔ کا پہلا وداع حسین کا اپنی بہن زینب سے وداع ہے۔ کیا ہے اس وداع میں؟ کا بھیا جا رہے ہو، اور یہ جا رہے ہو کہہ کر زینب نے اس طرح سے رونا شروع کیا کہ حسین کو بھی رونا آ گیا، اور تاریخ نے لکھا، وہ بکا و بکت، حسین بھی روئے اور زینب بھی روئی، اور یہ دونوں اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ اب جو غشی سے بیدار ہوئے تو زینب کو حسین نے اپنے گلے سے لگا لیا، اور تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد کبھی زینب نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ شاید اپنے دل کا صبر حسین نے زینب کے دل میں منتقل کر دیا ہے۔ کیا صبر ہے دل حسین کا؟ اکبر کو اٹھا لائے حسین، قاسم کو اٹھا لائے حسین، اصغر کو اٹھا لائے حسین، وہ جو حسینی صبر ہے نا، وہ حسین نے زینب کے دل میں منتقل کر دیا۔ اب وہ زینب کہ جو دو محرم کو حسین کو کہہ رہی تھی، بھیا میرا یہاں رکنے کو جی نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہو سکتا کسی اور مقام پر جا کر قیام کر لیں، اب وہ زینب ہے کہ جو شام غریبہ میں بھی نہیں گھبرا رہی، وہ صبر منتقل کر دیا حسین نے کہ بھیا جا رہے ہو؟ کہاں بہنا، وہ آخری وقت آن پہنچا کہ جس کا وعدہ تھا۔ کہ اچھا، اب جانے کا ارادہ ہے ہی تو میرے قریب آؤ، میں کچھ وصیتوں پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا اپنا گریبان کھولو۔ حسین نے اپنا گریبان کھولا، زینب نے حسین کے گلو اقدس کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ کہا بہن، مجھے بھی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا اپنے بازوؤں سے ردا ہٹاؤ۔ حسین نے زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ عزیزوں، یہ مرحلہ ہے، اور اب حسین نے ایک عجیب تقاضا کیا زینب سے۔ اس تقاضے نے زینب کے لیے اس بات کو حتمی کر دیا کہ بھیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ زینب کو फातिमा जहरा कह चुकी हैं कि जब हुसैन आए और मेरे हाथ का सिला हुआ कुर्ता मांगे, समझ लेना जैनब अब भैया से मुलाकात ना होगी। अब हुसैन ने जैनब से कहा, जाओ जैनब जाओ और उस संदूक से मां का सिला हुआ कुर्ता लेकर आओ। जैनब मां का सिला हुआ कुर्ता लेकर आई, हुसैन ने अपने लिबास के नीचे उस कुर्ते को पहना और उस कुर्ते को पहनने के बाद जगह जगह से उस कुर्ते को फाड़ना शुरू कर दिया, जगह जगह से तार तार करना शुरू कर दिया। फरमाने लगी, भैया ये वैसे ही बहुत कदीम सिला हुआ है, अब इसे जगह जगह से फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों इसे मजीद कोहना कर रहे हैं, क्यों इसे मजीद तार तार कर रहे हैं। फरमाने लगे, बहन तुम्हें नहीं मालूम बहुत लईम दुश्मन से मेरा सामना है, हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि शाम गरीबा हो जब हुसैन इस दुनिया से चला जाए। अरे लाशा हुसैन की बेहुर्मती की जाए, अल्लाह अल्लाह, बहन के सामने कोई भाई ये कहे कि मेरी लाश की बेहुर्मती की जाएगी। हाँ अजीजों, अब विदा हुए, अब दूसरा विदा जो तारीख ने लिखा है, दूसरा विदा जो तारीख ने लिखा है वो सैयद सज्जाद से विदा है। आए सैयद सज्जाद के खेमे में और पाइंती पर बैठ गए, पाइंती पर बैठ गए और सैयद सज्जाद के पैर को हिलाया, गशी से अफाका हुआ, मेरा मौला उठ कर बैठा, बाबा बाबा ये क्या हालत हो गई बाबा, बाबा ये चेहरे पर खाक कैसी है बाबा, बाबा ये लिबास पर खून कैसा है बाबा। एक दफा सैयद सज्जाद ने सवाल करना शुरू किए, ऐना ऐना अलीयुन अकबर, ऐना ऐना हबीब बिन मज़ाहिर, ऐना ऐना मियल अब्बास, बाबा ये बताओ, बाबा ये बताओ अली अकबर कहाँ है, बाबा ये बताओ, बाबा ये बताओ कि हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ है, बाबा ये बताओ अब्बास चचा अब्बास कहाँ है। हुसैन सारे सवालात सुनते रहे, किसी सवाल का जवाब न दिया। जब सैयद सज्जाद ने अपने सवालों को खत्म कर लिया, अब हुसैन ने एक जुमले में सैयद सज्जाद के तमाम सवालों का जवाब दिया, ए बेटा अब इस मक्तल में, इस करबला के सहरा में मर्दों में या मैं बाकी हूं या तुम बाकी हो। आजीजों, ज़ैनुल आबिदीन मेरा मौला सैयद सज्जाद इस एक जुमले से करबला की सारी दास्तान को समझ गया कि करबला में हुआ क्या, करबला में कौन कौन शहीद हो चुका। आजीजों आजीजों, सैयद सज्जाद से विदा करके उठे, बड़ी मुश्किल से खैमे से विदा किया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, बार बार खैमे का दरवाजा उठता था, बार बार दर खैमा गिर जाता था, ऐसा महसूस होता है कि कोई हुसैन का दामन पकड़े हुए है। यहाँ पर उलमा बयान करते हैं, कहते हैं अगर कोई बड़ा होता हुसैन को बाजू थाम कर रोकता, अरे दामन का पकड़ना ये बताता है काफिलाए हुसैनी के छोटे छोटे बच्चे हैं जो हुसैन को जाने नहीं देते, जो हुसैन को जाने नहीं देते। अब आए, फरस पर सवार हुए, घोड़े पर सवार हुए। अब जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, क्या देखा, क्या देखा, एक बच्ची है जो घोड़े को आगे नहीं बढ़ने देती, जो घोड़े को आगे नहीं बढ़ने देती। दोबारा फरस से नीचे तशरीफ लाए और आकर कहने लगे, बेटी बेटी क्या हो गया। कहा, बाबा मैं जाने से मना नहीं करती, मैं जाने से मना नहीं करती, बस एक दफा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा, बस एक दफा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। अरे हाँ सकीना, आखिरी दफा बाबा के सीने पे सो जाओ, अब के बाद बाबा के सीने पर तीर होंगे। अरे सोने न मिलेगा बाबा के सीने पे, और अगर सो भी गई तो ताजियाने मार कर उठाया जाएगा सकीना। आजीजों, सकीना ने जब गिरिया करना शुरू किया, मेरे मौला से बर्दाश्त ना हुआ, मेरे मौला से बर्दाश्त ना हुआ, माने लगे, सयतूल बादी या सकीनत अलमी मिन कल्बुका ज़लहमा मुदहानी, ए सकीना मेरे बाद एक तूलानी गिरिया आने वाला है, अरे ला तोरिकी कल्बी बिदमए का हसरती, अरे इस तरह मेरी जिंदगी में मुझे रो रो के मत तड़पाओ सकीना, अरे बाप के जिगर को न जलाओ सकीना। अरे अजीज अजीजों, अरे अजीजों, बस हुसैन रवाना हुए, हर थोड़ी देर बाद आते हैं, खैमे की पुष्ट पर नेजा गाड़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अजीम, हर थोड़ी देर बाद जाते हैं, खैमे की पुष्ट पर नेजा गाड़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अजीम, अरे बीबियों को आसरा रहे, बीबियों को आसरा रहे, हुसैन अभी जिंदा है। जब बहुत देर हो गई, जब बहुत देर हो गई, और जब बहुत देर हो गई और हुसैन की कोई आवाज ना आई, हुसैन की कोई आवाज ना आई, जैनब ने अपने आप को ख्याम से बाहर निकाला, एक ऊंचे मकाम पर तशरीफ ले गई और वहां जाकर एक अजीब मंजर देखा, एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा अजीजों? दुनिया में जैनब और हुसैन से ज्यादा एक दूसरे को कोई नहीं जानता जितना जैनब हुसैन को जानती हैं, जितना हुसैन जैनब को जानते हैं, इतना एक दूसरे को कोई नहीं जानता दुनिया में। अजीजों, मक्तल में मुझे नहीं मालूम कि हुसैन के साथ क्या किया गया, हुसैन पर कितने जख्म लगाए गए, बस एक जुमला जैनब का हुसैन की सारी मुसीबत को बयान करने के लिए काफी है। फरमाने लगी, अंताखी, क्या तू मेरा भाई है? अरे जैनब, अभी तूने ही तो विदा करके भेजा है, क्या मैंने इसको तो विदा करके नहीं भेजा था? अरे चंद देर में करबला के मक्तल में हुसैन के साथ न जाने क्या हुआ, बहन भाई को ना पहचान सकी। अंताखी, क्या तू मेरा भाई है? क्या तू मेरी माँ का बेटा है? क्या तू मेरे बाबा का लखते जिगर है? अजीजों, उमर इब्ने साद से मुखातब होकर कहने लगी, तू इस तरह खड़ा रहेगा और अल्लाह के नबी का नवासा कटता रहेगा, तू इस तरह देखता रहेगा और हुसैन ज़िबा होता रहेगा? जब ज़ैनब की फरियाद किसी ने ना सुनी, फरमाने लगी, ऐ कौमे अश्किया, ये वो जगह है कि जहां मेरे नाना बोसा दिया करते थे, अरे ये वो जगह है जहां मेरे नाना चूमा करते थे। लेकिन जब ज़ैनब की सदा करबला के मैदान में, अरे किसी ने न सुनी, एक दफा मदीने का रुख किया, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ नाना आप पर सलाम, अरे यहां तो जैनब की कोई नहीं सुनता, अरे नाना आप ही सुन लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, हाजा हुसैनुन, ऐ अल्लाह के नबी, ये आपका हुसैन है, मुरम्मलुन बिद्दिमा, ये खाक व खून में गलता, मुकत्तउल आज़ा, अरे इसका बदन टुकड़े टुकड़े। और अब इसके बाद ज़ैनब उलिया ने एक ऐसा जुमला कहा, शायद कब्रे नबी थर्रा गई हो, शायद मदीने में रसूल की कब्र को जलजला आया हो। फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, वह बना तुका सबाया, और आपकी बेटियां असीर की जा रही है, आपकी बेटियां जिंदानी की जा रही है। अलालअनतुल्लाहि अलल्कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबियन क़लबून रिज़न बिरज़ाइका वतस्लीमन लिअम्रिका ला मअबूदा सिवाक या ग़यासल मुस्तग़ीसीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر الاهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين भैया तुम्हें
घबरा